Hare Rama. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama
प्रभुपादि की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय। राधा माधव कुंज गोपी जाना वल्लभ गिरिवर धारी जनाबल्लभ गिरिवर धारी सदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन
Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। विष्णुपाद परमहंस परिपूजाचार्य अष्टोत्तर श्रीमती स्टीवन कृषि श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य सेवियर ऑफ द होल्ड वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की। ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज, ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు గురు అండ్ గౌరాంగ శ్రీల ప్రభుపాదకి. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद्भागवतम के दसम स्कंद का, इनका शीर्षक है कृष्ण जन्म अध्याय तीसरा, श्लोक संख्या नंबर 18। कृपा करके मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराइए। यह आत्मना दृश्य गुणेषु सन् इति व्यवस्यते स्वव्यतिर कथा अबुधा वीना अनुवादम् न च स मनीषितां सम्यक् यथा त्यक्तम् उपादत पुमा। य आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति य आत्मन गुण य आत्मन दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिर्कतो अभुधा व्यवस्यते स्वव्यतिर्कतो अभुधा। विनानुवादं न च तन्मनीषिताम् विनानुवादं न च तं मनीषितम् सम्यग् यथ त्यक्तम् उपादत् पुमान् सम्यक् यथा त्यक्तम् उपादत पुमा। आत्मन दृश गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिर्कतो अबुधा विनानुवादं न च तन्मनीषितां सम्यक् यथ त्यक्तुम् उपादत पुमान्। बोलिए। माता जी शब्दार्थ इस प्रकार है, यह जो भी आत्मना आत्मा का दृश्य गणेशु शरीर आदि दृश्य पदार्थों में से सन उस अवस्था को प्राप्त इति इस प्रकार व्यवस्थ्यते कर्म करता रहता है, स्व्यतिरेकता मानो शरीर आत्मा से स्वतंत्र है, आबुधा द्रुत मूड वीना अनुवादम समुचित अध्ययन के बिना न नहीं च भी तत् शरीर तथा अन्य दृश्य वस्तुए मनीषितम विवेचना किए किया हुआ सम्यक पूरी तरह यथा मूर्ख होने के कारण त्यक्तम तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। उपादत इस शरीर को वास्तविकता मान बैठता है। पुमान मनुष्य। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बने अपने दृश्य शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है वह अस्तित्व के आधार से ही अभिज्ञ होता है और इसीलिए वह मूढ़ है। जो विद्वान है वे इस निर्णय को नहीं मानते क्योंकि विवेचना द्वारा यह समझ जा सकता है कि आत्मा से निराश्रित दृश्य शरीर तथा इंद्रिया व्यर्थ है। यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया है किंतु मूर्ख व्यक्ति इसे सत्य मानता है। तात्पर्य आत्मा के मूलाधार बिना शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता। यद्यपि तथाकथित वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी रासायनिक प्रयोगशालाओं सजीव प्राणी को उत्पन्न करने के नाना प्रयास किया है किंतु वे ऐसे कर नहीं पाए क्योंकि जब तक आत्मा विद्यमान नहीं होता तब तक भौतिक तत्वों से शरीर निर्मित नहीं किया जा सकता। चूंकि वैज्ञानिक शरीर की रासायनिक रचना के विषय में जो सिद्धांत है उनके प्रति अब मुग्ध है अतः हमने अनेक वैज्ञानिकों को ललकारा है कि एक छोटा सा अंडा तो बनाकर दिखाइए। अंडे के रासायनिक पदार्थ सरलता से उपलब्ध किया जा सकता है। उनमें एक सफेद अंश होता है और एक पीला अंश। यह एक आवरण से ढके रहते हैं और आधुनिक वैज्ञानिक सरलता से इसकी नकल कर सकते हैं। माना कि वे ऐसे अंडा बना भी ले किंतु जब उसे वे इनक्यूबेटर के भीतर रखते हैं तो इस मनुष्य निर्मित रासायनिक अंडे से मुर्गी के चूहे नहीं निकालते। इसमें आत्मा का योग्य होना ही चाहिए क्योंकि जीव केवल रासायनिक संयोग नहीं है। अतः जो लोग सोचते हैं कि आत्मा के बिना जीवन का अस्तित्व हो सकता है उन्हें अबुद्ध या मूर्ख कहा गया है। पुनः कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शरीर को अपर्याप्त समझकर शरीर का तिरस्कार करते हैं। यह भी मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। इस शरीर का न तो तिरस्कार किया जा सकता है न ही इसे पर्याप्त कहकर स्वीकार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान तथा शरीर एवं आत्मा भगवान की ही शक्ति है जिनका वर्णन स्वयं भगवत गीता में भगवान ने किया है। भूमिरपोर्ण लोवायुर्खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकारितियम् मे भिन्नप्रतिमस्तता अपरयामितस्त्वन्यं प्रकृतिं विधि मे परां जीवभूतानां महाबाहो जयेदां धार्यते जगत्। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार यह मेरी 8 भिन्न भौतिक शक्ति हैं किंतु हे महानुभाव अर्जुन इस अपराशक्ति के अतिरिक्त भी मेरी एक पराशक्ति है जो उन समस्त जीवों से युक्त है जो भौतिक प्रकृति के संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, अथवा शरीर का भगवान से वैसा ही संबंध होता है जैसा आत्मा का होता है। क्योंकि दोनों ही भगवान की शक्तियां है, अथवा इनमें से कोई भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि उनका जन्म सच्चाई से हुआ होता है। जो जीवन के इस रहस्य को नहीं जानता वो अभुदा कहा गया है। वैदिक आदेशों के अनुसार एत्यात्म्यम इदं सर्वं सर्वखलविदं ब्रह्म शरीर वस्तुए परब्रह्म है, अथवा शरीर तथा आत्मा दोनों ही ब्रह्म है, क्योंकि पदार्थ तथा आत्मा ब्रह्म से उद्भूत है। वेदों के निर्णयों से विज्ञ न होने के कारण कुछ लोग भौतिक प्रकृति को पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ लोग आत्मा को पदार्थ मानते हैं, किंतु वस्तु वास्तव में ब्रह्म ही पदार्थ है। ब्रह्म समस्त कारणों का कारण है। इस जगत के अव्यय तथा कारण ब्रह्म है और इस जगत के अव्ययों को हम ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं रख सकते। साथ ही चूंकि इस भौतिक जगत के अव्यय तथा इसका कारण ब्रह्म ही है, अथवा ये दोनों ही सत्य है, अतः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम व्याख्याय की गई वेदांत नहीं है। यह जगत मिथ्या नहीं है। ज्ञानी लोग इस जगत का निषेध करते हैं और मूर्ख लोग इसे ही सत्य मानते हैं। इस तरह दोनों ही दिग्भ्रमित रहते हैं। यद्यपि आत्मा की तुलना में शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हम यह तो नहीं कह सकते कि यह मिथ्या है। फिर भी शरीर नश्वर है और जो मूर्ख भौतिकवादी व्यक्ति है जिन्हें आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, नश्वर शरीर को सत्य मानकर उनको अलंकृत करने में लगे रहते हैं। इन दोनों से शरीर को मिथ्या मानकर उसका निषेध तथा शरीर को सर्वस्व मानना बचा जा सकता है। यदि कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त कर लिया जाए, यदि हम इस जगत को मिथ्या मानते हैं तो असुरों की कोटि में आ जाते हैं, जो यह कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और ईश्वर इसका नियंत्रक नहीं है। भगवद गीता के 16वें अध्याय में इसे असुरों का निर्णय कहा गया है।
सोम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगतामियं ददापि स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुण वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं साध्वदूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले मैं सारे भक्तों को धन्यवाद करूंगा, इतनी भारी वर्षा में भी आप लोग समय निकालकर इस श्रीमद् भागवतम के कक्ष पर बैठे हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के ये 18वें श्लोक से चर्चा करेंगे, जहां पर वसुदेव भगवान के जन्म के बाद पश्चात उनकी स्तुति गा रहे हैं। तो यहां पर वसुदेव के प्रार्थनाओं से, आज के जो प्रार्थनाओं से मूलतः ये दिखाई पड़ता है कि यहां पर मूर्खों के विषय में और विद्वानों के विषय में चर्चा किया गया है कि वो मूर्ख किसे माना गया है। तो यहां बताया गया है कि अबुधा यानी कि जो मूर्ख है, कौन मूर्ख है, स्व व्यति व्यतीर कथ। तो अबुधा स्व व्यतीर कथ यानी कि जो जड़ वस्तु को आत्मा के विहीन या आत्मा से स्वतंत्र ही सब कुछ मानते हैं, वैसे व्यक्ति अबुधा करके पुकारा गया है। तो कुछ लोगों का ये तर्क होता है, जो लोग ये कहते हैं कि शरीर ही सब कुछ है या शरीर ही पूरे मूल वस्तु का जो आधार है वो है शरीर, तो इनमें श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में चर्चा करते हुए ये बताते हैं कि मुख्यतः वैज्ञानिक लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ऐसे मूर्खों की चार कैटेगरी है। एक है जो कहते हैं देयर इज नो गॉड, भगवान करके कोई व्यक्ति है ही नहीं। दूसरा जो मूर्ख व्यक्ति कहता है गॉड इज देयर बट आफ्टर क्रिएशन ही बिकेम लाइक कंफ्यूज्ड, भगवान है लेकिन सृष्टि के निर्माण करने के बाद भौखला गया। और जो तीसरे प्रकार के जो मूर्ख हैं, जो कहते हैं गॉड इज देयर बट आई विल किल हिम बाय माय पेन, पेन इज माइटर देन सॉर्ड, भगवान है लेकिन मैं उसे अपने कलम से खत्म कर दूंगा। और चौथे प्रकार के जो मूर्ख हैं, जो कहते हैं आई एम गॉड, प्रॉब्लम सॉल्व, अभी बचा क्या, तो ये कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं। ये चार प्रकार के जो कैटेगरी हैं, इसके अंदर जो प्रथम जो आते हैं वो है वैज्ञानिक लोगों का, इसमें नंबर लगता है, जो कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि भगवान करके कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो वैज्ञानिक लोगों का मूलतः ये जो जड़ वस्तु का जो निर्माण जो हुआ है, उन लोगों का जो तर्क क्या है, तो उन लोग कहते हैं, जैसे कि बच्चों लोगों को भी पढ़ने के लिए अपने स्कूल में इस प्रकार यही शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार हर वस्तु सारा अंधकार से उत्पन्न हुआ है, उसमें पूरी तरह भगवान की भावनाओं को खत्म कर दिया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल के जो स्कूल कॉलेज जो है वो कसाई खाना है, नन अदर बेटर देन स्लॉटर हाउस, वो केवल कसाई खानों का झुंड है जहां पर भगवान की भावनाओं को खत्म कर दिया गया है। तो वैसे इन लोगों का जो तर्क है, वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एक गोला था, वो गोला फूट गया, उसमें से कुछ चितर बितर गए और उसमें से एक गोला जो कि घूमते घूमते उसमें काफी गैस थे, उस गैस से रसायन उत्पन्न हुए, उस रसायन से छोटे छोटे कीटाणु उत्पन्न हुए, और वो छोटे छोटे कीटाणु से जब उस कीटाणु का जब क्रोमोसोम जब बिगड़ गया तो दूसरा कीटाणु उत्पन्न हुआ, यानी कि कीड़े से मच्छी बना, मच्छी से केकड़ा बना, केकड़ा से कछुआ बना, कछुए से फिर सर्प बना, सर्प ने सोचा मैं जमीन पे खड़े रहूं तो पेड़ बन गया, तो पेड़ ने सोचा थोड़ा आकाश में उड़ूं तो पक्षी बन गया, तो पक्षी ने सोचा थोड़ा जमीन पे चलूं तो चार पैर वाला प्राणी बन गया, तो उसमें से एक बंदर बन गया, तो बंदर सोचा कि चार पैर से कि दो पैर से चलूं तो दो पैर से चलना सीखा, और फिर बंदर सोचा कि पूंछ किसी काम में पूंछ काट देता हूं, पूंछ काट दिया और बन गया मानव। तो ये डार्विन थियरी है जिसमें ये बताया जाता है कि हमारा पूर्वज बंदर था, लेकिन श्रील प्रभुपाद बड़े अपने सटीक उत्तर देते हैं और वो कहते हैं कि वो डार्विन का बाप बंदर होगा। वी ऑल केम फ्रॉम कृष्णा। तो वास्तविकता हमारा जो पूर्वज है वो है देवलोक, जो कि स्वयं भगवान से हमारी उत्पत्ति हुई है, जो कि भगवान 14वें अध्याय के 6वें श्लोक में इसकी पुष्टि करते हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तिया संभवन्ति तासां ब्रह्म महत्योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो ये इस प्रकार भगवान स्वयं ये कहते हैं कि मैं ही समस्त वस्तु का या समस्त योनियों का पिता हूं, लेकिन वैज्ञानिक लोग इस बात को तिरस्कृत करते और कहते हैं कि सभी कुछ अपने आप उत्पन्न हुआ है, हर वस्तु अपने आप बना हुआ है, कैसे अपने आप बन सकता है। और उनका जो तर्क शुरुआत क्या है, एक गोला फूटा और यह सब बन गया। अब फूटने के बाद कभी कुछ बनता है क्या? कभी हमने ऐसा सुना है क्या, ट्रक में टाइम बॉम्ब रखती है और ट्रक फूट गया, बन गया दो मोटरसाइकिल? क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी फूटने के बाद कुछ चीज निर्माण होता है क्या? नहीं, फूटने के बाद नाश होता है, कभी कुछ बनता नहीं है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक लोग इस प्रकार के तर्क रखते हैं कि ये उन लोगों का तर्क ही शुरुआत में गलत है। कहते हैं कि फूटने के बाद बना, लेकिन फूटने के बाद तो नाश होता है। एक न्यूटन साइंटिस्ट करके एक वैज्ञानिक था जिनको थोड़ा बहुत श्रद्धा थी भगवान के प्रति। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने प्रयोगशाला के स्थान पर उन्होंने छोटे छोटे ऐसे ग्रह बनाए, गुरु चंद्रमा सूरज इत्यादि बनाए, और उसको बनाने के पश्चात उन्होंने जब बटन चालू किया तो अपने आप सब घूमता था। तो उन्होंने अपने मित्र को बुलाया, जो दूसरा वैज्ञानिक जो सबसे बड़ा नास्तिक था, और उसको बुलाया और कहा कि देखो एक अद्भुत चीज घट चुकी है। बोला क्या? बोला कि मैं रात को सोया था, सुबह उठ के देखा तो ये अपने आप बन गया है। तो ये वैज्ञानिक कहने लगा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कोई बना तुम बनाए रहेंगे, तुम मुझसे झूठ। नहीं मैं सत्य कह रहा हूँ, ये अपने आप बन गया। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, कोई बना के गया होगा? नहीं कोई नहीं बनाया, मैं सोया था यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अपने आप बन गया। बोला नहीं मैं नहीं मानता हूँ। तो बोले जब तुम ये छोटे वस्तु को नहीं मानते हो कि अपने आप बन गया है, तो इतना बड़ा चंद्रमा इतना बड़ा पृथ्वी ये तुम कैसे कहते हो कि अपने आप बन गया है? क्या इसके पीछे किसी का आधार या किसी का हाथ नहीं है? तो बेचारा भौंकला गया कुछ समय के लिए। तो वास्तविकता जब कुछ चीज बनी है तो यह सिद्ध होता है कि वहां पर कोई व्यक्ति आके गया है। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई रसोई घर में घुसा और वहां पर पूरी और खीर बना हुआ है तो कोई ये नहीं कहेगा कि अपने आप बन गया है, तो ये तो मूर्खता। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उन लोगों को मूर्ख के साथ तुलना किया है। और ऐसे ये पहले प्रकार के मूर्ख हैं। और जो दूसरे प्रकार के मूर्ख जो होते हैं, जो कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण के पश्चात भगवान भौंकला गए कि मैंने क्या बना दिया। जैसे कि जो घड़ी घड़ी बना दिया और घड़ी चालू कर दिया, अब घड़ी चल रहा है अपने आप, तो घड़ी अपने आप चल रहा है, लेकिन उसको चलाने वाला जो घड़ी जो बनाने वाला व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं है, वो छोड़ दिया उसको अपने हाल में। उसी प्रकार भगवान ने सृष्टि बना दी और ये अपने हाल में चल रहा है, और जब अलार्म बजता है तो बंद कर देते हैं। ठीक उसी तरह ये जब संसार का जब प्रलय के जब समय पर भगवान सो के उठते और इसे वाइंड अप कर देते प्रलय में डूबा, तो अभी क्या है, अभी जो व्यक्ति जो कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। इसलिए उन लोगों का यह मुख्य तर्क होता है कर्म ही पूजा है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि कौन सा कर्म। तो उनका कहना है ऐसे जो दूसरे कैटेगरी के जो मूर्ख हैं, जो कहते हैं कि यहां पर हमारे कर्म के लेन देन में भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, भगवान के यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, इसलिए किसी का बुरा मत करो, सबका अच्छा करो। क्यों मंदिर जाना है, क्यों भगवान को परेशान करना है, घर पे बैठे रहो, मन साफ रखो, किसी का बुरा मत चाहो, बस हो गया। ये उनकी भक्ति है या ये उनका कर्म है, लेकिन ये भी एक प्रकार के नास्तिक है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ऐसे प्रकार के जो नास्तिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये उस समय की बात है कि जब वियतनाम वार जब चल रहा था, तो उस समय जर्मन के हर एक घर के सदस्यों को बुलाया जा रहा था युद्ध भूमि में। अब वहां पर युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए इन लोग राजी नहीं थे, लेकिन सरकार का बहुत कड़ा नियम था कि सबको आना होगा, तो सभी लोग निकल पड़े अपने घर से। तो उनके घर के अंदर की जितनी भी पत्नियां थी सब प्रार्थना करने लगे कि मेरे पति वापस आ जाए। तो यीशु मसीहा को खूब प्रार्थना की है, लेकिन परिणाम यह हुआ कि उन लोग वापस नहीं आए, उन लोग मृत्यु के घाट पहुंच गए। और जब उनको सुनने में आया तो इन्होंने ये निर्णय लिया, भगवान कुछ है ही नहीं, भगवान बेचारे हैं, भगवान कुछ कर नहीं सकते, केवल हाथ रखकर ऐसे खड़े हैं, मगर हमारे जीव में कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अपना खुद करो। तो ये जो इस प्रकार के नास्तिक होते हैं, जो ये तर्क रखते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं हमने किया, जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं भगवान ने करवाया, ये इस प्रकार के नास्तिक होते हैं। तो इन प्रकार के नास्तिक जो होते हैं, इनके विषय में ऐसे बताया जाता है कि जैसे कि एक बार एक राजा था, वो राजा मंच के ऊपर वो सीधे ऊपर खड़े रहकर कई गरीबों को, वो छत के ऊपर चढ़कर गरीबों को सोने सोने की सरपिया फेंक कर देते थे, और कई गरीब भिखारी लोग आते थे, सोने की सरपिया जेब में डाल के चले जाते थे, लेकिन कोई ये तक नहीं देखता था कि वो कौन फेंक रहा है। तो राजा बड़ा मान था कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति तो कम से कम देखना चाहिए, कोई देख ही नहीं रहा है। तो ये राजा गया एक पंडित विद्वान से पूछा कि ऐसी ऐसी दशा है कि कोई देख भी नहीं रहा है। तो इस पंडित ने यह सुझाव दिया कि देखो, अब की बार जब तुम सोने की सरपियां फेंकोगे तो फेंकने के वो थोड़े ही समय के बाद तुम कंकड़ पत्थर फेंकना। बोला ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सोने की सरपियां फेंका, कई लोग आ गए बिनने के लिए, और तुरंत ही पत्थर फेंकना शुरू किया। अब जब जोरदार धार धार लगा तो कोने में दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे है। तो राजा खुश, बोला अब की बार कोई तो देखा। तो राजा गया वापस विद्वान व्यक्ति के पास और कहने लगा, अब इस बार किसी ने तो कोई ना कोई देखा, लेकिन बहुत गाली देखकर देख रहा था, लेकिन कम से कम देखा तो सही। तो पंडित से पूछा कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो पंडित ने कहा, इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब तक भगवान हमारे जीवन में जब तक अच्छा कार्य करते हैं, तब तक किसी को फुर्सत भी नहीं कि एक बार भगवान को हरे कृष्णा करें। लेकिन जैसे ही कुछ जीवन में कुछ बुरी घटना घटती है तो तुरंत ही उंगली दिखाते, ऊपर वाला सही नहीं है, और सीधे आरोप और दोष लगाते हैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे जो मूर्ख जो है, जो नास्तिक लोग, जो भगवान को कितनी भी गालियां दे, लेकिन वो सारी गालियां उन्हीं को ही लगेगी। जैसे कोई ऊपर देखकर थूकता है तो थूकेगा तो क्या होगा, ऊपर देख के तो उसके मुंह पे ही गिरेगा, जितने जोर से थूकेगा उतना जोर से शॉवर लगेगा। तो वैसे जो नास्तिक जो है, वो नास्तिक जो ये कहते हैं कि भगवान इसमें कोई लेन देन नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, या कर्म ही श्रेष्ठ मानते हैं, ये दूसरे प्रकार के मूर्ख हैं। ऐसे तीसरे प्रकार के मूर्ख है जो भगवान के दिए हुए जो शास्त्र को तोड़ मोड़ कर देते हैं और तोड़ मोड़ कर उसके अंदर अपने ही व्याख्याएं डाल देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण बताऊंगा, जैसे कि भगवत गीता में ये लिखा गया है जो कि कुछ लोग पंडित लोग ये तर्क रखते हैं भगवत गीता के इस श्लोक को तर्क पेश करते हुए, कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने ये कहा है कि चाय पी सकते हैं और चाय मुझे बड़ा पसंद है। बोले कहा, तो बोलते देखो सर्वस्व चाहम, मुझे चाय बड़ा पसंद है और वो भी ऋषि संविनिष्ट स्टोव से बना हुआ चाय। तो अब ये जो श्लोक है, जिस श्लोक को तोड़ मोड़ करके उन लोगों ने अपने ही व्याख्याएं डाल दी है, जिसमें लोग ये तर्क रखते हैं अपने ही मन की संतुष्टि उस भगवान के दिए हुए उपदेश पर डालते हैं। ऐसे ही एक राजा था, उस राजा जो कि अपने सारे एक मंत्री से वो रोज एक श्लोक सुनता था, उन्हें बड़ा पसंद था वो श्लोक। तो शुक्लाम वरदरम विष्णु सतीवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम वदनम ध्यायेत सर्व विघ्न उपशांति ही, तो सुन के बड़ा पसंद प्रसन्न होता था। तो हुआ यू कि एक दिन एक दूसरा एक व्याख्या करने वाला व्यक्ति आ गया, तो कहने लगा हे राजन आपको पता है इसका अर्थ क्या है? तो बोला नहीं। तो बोला वास्तविक इसका अर्थ यह है, ये जो श्लोक है ये श्लोक का अर्थ एक रुपए सिल्वर कॉइन के साथ किया गया है। बोला चांदी के सिक्के के साथ? बोला कैसे? बोले देखो शुक्लाम्बरम, शुक्लाम यानी कि सफेद रंग का, शुक्लाम्बरम दरम विष्णुम सचिवरणम चतुर्भुजम, ये क्या है? चारणा चारणा चतुर्भुजम, जब चारणा चारणा चार बार मिला दिया जाए तो एक रुपया। प्रसन्नम वदनम ध्यायेत, और जब दरिद्रता आती है जैसे ही ये एक रुपये का सिक्का जैसे ही मिलता है सर्व विघ्न उपशांति ही। तो राजा बोला वाह वाह वाह, यू सेलेक्टेड ही रिजेक्टेड, और उसको हटा दिया। और ये बड़ा मायूस होके घर पर गया, तो घर पर गया तो उनके पुत्र ने देखा, पिताजी आप क्यों इतनी चिंतित हो? तो कहा कि क्या करूं, ऐसे ऐसे राजा ने हकाल दिया। तो पुत्र ने कहा चिंता मत करो मैं जाता हूं। तो पुत्र आया, अब जब पुत्र आया तो उन्होंने कहा हे राजन आपको पता है इसका वास्तविक अर्थ क्या है इस श्लोक का? बोला नहीं। बोला इसका वास्तविक अर्थ मिलता जुलता है और वो भी दही वड़ा के साथ। तो राजा ने कहा वो तो मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा कैसे होता है जरा बताओ? तो बोला देखो शुक्लाम्बरम, अभी आप चांदी का एक रुपया सिक्का लो और दही वड़ा लो, कौन सा ज्यादा सफेद है? दही वड़ा ज्यादा सफेद है। तो राजा बोला हाँ बात तो सही है, बात में दम है। शुक्लाम्बरम दरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, और ये जो जब दही वड़ा खाने की जब बारी आती है तो चार वर्ण आश्रम धर्म सभी खा सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब खा सकते हैं। और कैसे जब भूख लगती है प्रसन्नम वदनम ध्यायेत, जैसे ही उसे कोई खाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न प्रफुल्लित तो होते ही सारा भूख नष्ट हो जाता है सर्व विघ्न उपशांति। तो राजा बोला यू सेलेक्टेड ही रिजेक्टेड। तो हर एक श्लोक के कई अर्थ बन सकते हैं। तो कहने का मूल अर्थ यह है कि ये जो ऐसे भी प्रकार के मूर्ख हैं जो भगवान के अस्तित्व को हटा देते हैं, और ये चौथे प्रकार के जो मूर्ख हैं जो कहते हैं मैं स्वयं भगवान हूं। अब यहां पर इन श्लोकों में जो चर्चा की गई है, यहां पर उस मूर्खों के विषय में चर्चा किया गया है जो दृश्यते गुणेषु, जो प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत फंसे हुए हैं। तो जब जीव आत्मा इस धरातल में आते हैं तो प्रकृति के तीन गुणों को धारण करते हैं, तो वो है बद आत्मा। तो दो प्रकार के जीव हैं, दो ही में पुरुषे लोक शर अक्षर एवच शर सर्वानि भूतानि कुतस्थ अक्षर मुच्यते। तो वो जो दो प्रकार के जो जीव है, एक है नित्य सिद्ध, दूसरा है नित्यबद्ध। तो जो नित्यबद्ध जो जीव आत्मा है वह इस संसार में आते ही प्रकृति के तीन गुणों के चुंगल में फंसते हैं। सत्व रजस तमस्ति गुण प्रकृति संभवा निबध्यंती महाबाहो देह देहिनाम अव्ययम्। वो जबकि मुक्त है लेकिन इस संसार में आने के बाद वो प्रकृति के तीन रज्जु से पूरी तरह बंधित हो जाते और कठपुतली जैसा कार्य करते। इसलिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि अत केन प्रयुक्त पापम चरित पुरुष अनिच्छन पिवार्षण बलातीवा नियोजित। कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो न चाहते हुए भी व्यक्ति को बलपूर्वक पाप क्रियाओं में डुबाती है। तो वो कौन सी रज्जु है? वो है तीन गुण जो कि दृश्यते गुणा। तो ये जब तीन प्रकार के गुणों के चुंगल में जब जीव आत्मा आता है तो अनेक अनेक प्रकार के देह धारण करता है। 84 लाख प्रकार के विभिन्न प्रकार के वो देह को प्राप्त करता है। तो वैसे दो प्रकार की चेतना है, एक है तुरिया दूसरा है बद्ध। अब बद्ध के अंदर और तीन श्रेणी है। तो ये बद्ध की जो चेतना है इस बद्ध जीव के चेतनाओं में उनका एकमात्र ये आधार होता है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है, जबकि यह सत्य नहीं है। जैसे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में यह बताया गया है, ऊर्ध्वम मूलम मदशाखा अश्वत्थम प्रायुरव्ययम् चंदांसी यस्य प्राणानि यस्तम वेदस्य वेदि अस्तवम्। यहाँ पर जो कि भौतिक संसार की तुलना की गई है अश्वत्थ वृक्ष के साथ। अब इसको संस्कृत का अगर तोड़ करते हुए अगर हम समझे तो स्व यानी कि कल, अ यानी कि नहीं, तो अस्व थम, थम यानी कि जो, स्थ यानी कि नहीं है यानी कि रहना, स्थ यानी कि रहना। तो अश्वत्थम, अस्व यानी कि कल, अ यानी कि नहीं। तो जो कल नहीं है उसको कहते अश्वत्थ, अश्वत्थ वृक्ष। तो अश्वत्थ वृक्ष यानी कि क्या, यह संसार का अश्वत्थ वृक्ष के साथ तुलना इसलिए किया गया है क्योंकि यह संसार आज है, कल नहीं है। आज दिखाई दे रहा है लेकिन कल यह नहीं दिखाई देगा। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते, जैसे कुंभ मेला में कई लोग जमा हो जाते और कई भीड़ जमती है, लेकिन क्या केवल उसी दिन, कल के दिन सब गायब, कोई नहीं रहता वहां पे। वैसे यह भौतिक संसार की तुलना की गई है जो कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। और जो बद्ध आत्माएं हैं वो ये सोचते हैं कि यही भौतिक संसार वही वास्तविक सत्य है। और ऐसे बद्ध आत्माओं का तीन चेतना है, और वो क्या क्या है? तो कहते हैं एक तो जागृत और दूसरा स्वप्न और तीसरा सुसुप्ति। ये तीन प्रकार की चेतना वाले ये बद्ध आत्माएं हैं। अब ये जो बद्ध आत्माएं, ये तीन प्रकार की बद्ध चेतना वाले, इनका किस प्रकार होता है? जैसे कि जागृति जो होते जो कि जागृत जाने की बड़े एक्टिव पोजीशन पर या बहुत ही कार्यशील क्रियाओं में लगे हुए हैं, वो जागृत अवस्था। और दूसरा है स्वप्न, यानी कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है और स्वप्न देख रहा है। और तीसरा सुसुप्ति, यानी कि ये दोनों से भी पूरी तरह अज्ञान हुआ हुआ, उसको कहते सुसुप्ति, जिसमें जागृत भी नहीं है स्वप्न भी नहीं है, पूरी तरह अंधकार है, उसको कहते सुसुप्ति। ये तीनों भी प्रकार के जो चेतना है इसे बद चेतना कहा गया, जो कि गुणों के प्रभाव से वो इस प्रकार तीन चेतनाओं के शिकार होते हैं। तो वो जो इस प्रकार जब शिकार होने के कारण उसे नाना प्रकार के देह धारण करते करना पड़ता है। तो जैसे कपिल मुनि अपने देवहूति को, अपनी माता को शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि किस प्रकार जीव आत्मा इस संसार में आते और नाना प्रकार के देहों को धारण करते और कैसे वो गर्भ के अंदर वो अनेक अनेक प्रकार के कष्ट को भोगता है। तो कहते हैं कि जीव आत्मा इस कर्माणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उपपद्यते स्त्रिया प्रविष्ट उद्धरम पुंसा रथे कनाश्रया। तो कहते हैं कि जीवात्मा इस धरातल में किस प्रकार आते हैं, तो बताया गया है कि जब जीवात्मा स्वर्ग में रहते हैं तो स्वर्ग के जितने भी वासीगण हैं, जैसे ही उनका क्षीण पुण्य मृत्युम लोकिम विशंति, जैसे ही उनका पुण्य खत्म होता है तो वो सीधा ही जो कि गोष्ट लोग है जहां पर भूत पिशाच लोग रहते हैं, उस स्थान पर उसके देह को फेंक दिया जाता है और उस देह को खाने के लिए सारे पिशाच लोग टूट पड़ते हैं और उनके हाथ पैर आँख कान सब खींच के नोच कर खाने लगते हैं और जिससे नोचने से उनके आंखों से आंसू गिरती है और उस आंसू से आत्मा बाहर आता है और उसी वो जो सूरज के किरण के प्रभाव से वो आत्मा वो ऊपर वो पानी के साथ ऊपर चला जाता है और बादल के रूप में छा जाता है और वही बादल के रूप में बरसात के ऋतु में वो इस धरातल पर आ गिरते हैं बरसात के बूंद से, उसी के अंदर आत्मा रहता है और वही पानी को एक पौधा पीता है और पौधा पीकर पौधे के अंदर फिर धीरे धीरे समय कुछ समय के बाद वही पौधा अन्न को उत्पादन करता है, उसी अन्न को एक पुरुष व्यक्ति खाता है और वो पुरुष व्यक्ति जब खाता है तो उससे ऊर्जा के रूप में बदलता है और वही ऊर्जा जब स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है तब वो यहाँ पर कहा गया है स्त्रीय प्रविष्ट उद्भरम पुंसा, तब उसके मिलन से एक बड़ा गोला उत्पन्न होता है। तो कहते हैं तो कहा गया है कि कालस्व एकद रात्रे न पंच रात्रे न भुदबुदम, एक बड़ा गोला उत्पन्न होता है, दशे न तू करकंदु, यानी कि फिर वो दस दिन के बाद वो मांस का एक ठेला बन जाता है, फिर मासे न तू श्रीयोद्वसभ्यम, तब एक महीने के बाद वही जो मांस का जो ठेला है उसमें से मस्तक निकलता है और फिर तीन महीने के बाद भाव अंगरी अध अंग विग्रह, जो कि बाकी जितने भी शरीर के हाथ है पैर है उंगलियां है नाखून है ये सब उत्पन्न होते हैं तीन महीने के बाद। चतुर्भीर द्वस धावत सप्त पंचाभी शुद्ध त्र उद्भव, और चार महीने के बाद उनके शरीर के अंदर हड्डी रक्त और चर्बी इत्यादि और जो कि नसें इत्यादि उत्पन्न होती हैं और फिर उस मातृ जगतन, और फिर ऐसे बताया गया है कि ऐसे छह महीने में फिर उसे भूख प्यास लगना शुरू होता है और माँ के नाभि जो है उस बच्चे के नाभि के साथ जुड़ा होता है और उस तरह माँ जो भी कुछ खाती है वो बच्चा अपने भूख प्यास को मिटाता है और माँ अगर खट्टा या तीखी चीज खाती है तो बच्चे को तकलीफ होता है उसी गर्भ के अंदर, उनकी स्थिति कैसी रहती है वो वी शेप जैसा हो जाता है, उनका गर्दन जो है ऊपर की ओर रहता है मस्तक नीचे की ओर। और ऐसे बताया गया है कि अगर वो शिशु उस गर्भ के अंदर अगर दाहिने तरफ उसका हिलना ढुलना होता है तो ये समझ में आता है कि वो पुरुष है या लड़का है और बाएं तरफ अगर बालक हिलता है तो ये पता लगता है कि अब या पुत्री जन्म लेने वाली, यानी कि सोनोग्राफी करने की भी आवश्यकता नहीं, यहाँ पर सब पूरा डिटेल बताया गया है। किस प्रकार वही शिशु गर्भ के अंदर अनेक अनेक मल मूत्र के बीच में फंसा हुआ है और वो जो कीड़े मकोड़े उसे जब काटता है तो कभी कभी वो मूर्छित होकर बेहोश हो जाता है और इस तरह वो गर्भ के अंदर जंतु वाचा भगवान की स्तुति गाता है कि मैं यहाँ पर आप फंसा हूँ ये नरकीय स्थान में, और उसे उसे पता है कि मैं अब जन्म लूंगा तो माया के नगरी में गिरूंगा। कोई कवि ये कैसे बता रहे थे कि जब बालक जब जन्म लेता तो जन्म लेते ही वो रो देता है, तो उसका कारण क्या है? तो बताते हैं कि वो बालक गर्भ के अंदर खूब प्रार्थना करता है कि मुझे जन्म नहीं लेना है, नहीं लेना, फिर से मुझे माया में नहीं फंसना है। हालांकि वो प्रार्थना करता है, जब उसका जन्म होता है तो वो तो रोता है, लेकिन उसके सारे सदस्य पार्टियां बनाते हैं, हमारे बिरादरी में और एक फंस चुका है, जय। तो वैसे वो जो शिशु जन्म लेते ही रो देता है। तो देखिए भौतिक संसार का सुख की शुरुआत क्या है, सुख की यह भौतिक संसार की सुख की शुरुआत यह है कि एक व्यक्ति जब जब तक रोएगा नहीं तब तक दूसरा व्यक्ति हंसेगा नहीं। तो जब तक कोई व्यक्ति रोएगा नहीं वो तब तक उसे आनंद नहीं आएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई कोई चमड़े का जूता का बिजनेस कर रहा है तो उनके लिए तो बड़ा खुशी की बात है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो उनके लिए दुख की बात है। लेकिन जितने भी छाते के बिजनेस वाले सब खुशी की बात है क्योंकि ज्यादा बिजनेस हो गया। वैसे ही जब कोई व्यक्ति रोगी नहीं हो रहा है तो सबकी खुशी की बात है, लेकिन किसके रोने की बात है? डॉक्टर की, क्योंकि कुछ धंधा नहीं हो रहा है। यह भौतिक संसार का सुख ही ऐसा है, जब तक दूसरे को कष्ट नहीं देगा तब तक उसे सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया जीव जीवस्य जीवनम, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब तक मारकर खाएगा नहीं तब तक वो पेट नहीं भरेगा। तो वैसे ये इस प्रकार वो जीव आत्मा गर्भ के अंदर रहता है, तो ऐसे बताया गया है कि वो शिशु गर्भ के अंदर रहता है, तब उस गर्भ के अंदर एक वायु है जिस वायु को कहते हैं षट वायु, और ये जो षट वायु उस गर्भ के अंदर बैठा हुआ शिशु को धकेलता है। अब ये जो षट वायु की जो रफ्तार है, ऐसा कहा गया कि एक घंटे में 300 माइल की रफ्तार में भागता है, और वो षट वायु उसे जोर से धकेलता है जिस कारण से शिशु रोता हुआ जन्म लेता है। और इसीलिए बत जीवों का जो जन्म होता है उसे कहते हैं कर्म जन्म, हमारा जो जन्म है उसे कहते हैं कर्म जन्म, लेकिन भगवान और भक्तों का जो जन्म होता है उसे कहते हैं कारण जन्म, और इस अध्याय का नाम भी है कृष्ण जन्म। अब भगवान ने जब जन्म लिया तो वो कोई हमारी तरह उसका जन्म नहीं है। तो ये जो कपिल मुनि जो बताए, ये जो किस प्रकार माता की गर्भ में शिशु तड़पता है, वो स्थिति हमारा है और भगवान का ऐसे नहीं है, या भगवान के भक्तों की ऐसी स्थिति नहीं है। एक श्री संप्रदाय के एक भक्त हुए जिसका नाम पड़ा षटकोप। ये जब माँ के गर्भ में जब थे उस समय ये षट वायु उसके पास आया था धकेलने के लिए। जब उस समय उसे स्पर्श करने गए तो यहाँ पर ये जो भक्त था उन्होंने सीधा उंगली दिखाया, बाजू से जा छूना तक नहीं, और वो जो षट वायु था वो घबरा गया, वो घबरा के साइड से निकल गया। और क्योंकि वो गर्भ में ही वो षट वायु के प्रति क्रोध किया, इसलिए जन्म लेते ही उसका नाम पड़ा षटकोप, कोप यानी कि क्रोध। और वो भी श्री संप्रदाय के बड़े एक अलवार हुए। तो वैसे जो भक्त और भगवान का जन्म होता है वो स्व इच्छा से होता है, इसीलिए बताया गया है अजो अपिसन्न व्यतात्मा भूतानाम ईश्वरो अपिसन्न प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि। तो वैसे भगवान प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय अपने इच्छा से वो प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान के जन्म को कहा गया है कारण जन्म, हमारा कर्म जन्म। और इस कारण से व्यक्ति अनेक अनेक कर्मों को काटने के लिए यहाँ पर जन्म लेते हैं। जैसे चाणक्य पंडित बताए कि किसी को अगर ये जांचना है कि वो पूर्व जन्म में कहाँ थे, वो स्वर्ग से आया हुआ है कि नरक से आया हुआ है, अगर उसे अगर ये जांचना है तो ये चार गुणों के आधार पर जा सकते हैं। तो कहते हैं स्वर्ग छतानां यह भूमि लोके चत्वारी चिन्हानी मनुष्य देह दानो अंगो मधुरा चाणी सुरा अर्चनम ब्रह्म दर्पणम च। तो कहते हैं चार प्रकार के गुण हैं जिस गुणों से हम ये जान सकते हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूं कि नरक से आया हूं। चत्वारी चिन्हानी मनुष्य देह, पहला दानो प्रसंगो, वो बड़ा दानवीर रहता है, दान देने में थोड़ा भी कंजूसी नहीं करता है। और दूसरा मधुराचा वाणी, उसकी वाणी बड़ी मिठास रहती है, हमेशा स्तुति गाता है। मधुराचा वाणी, वो भी स्तुति कैसे होगा, वो भी यथारूप में उसके अनुसार, ऐसे नहीं कि बस सारी सीमा को तोड़ दे। जैसे कोई अगर बोलेंगे वाह प्रभु जी क्या हेयर स्टाइल है आपका, तब तो फिर समझ जाएगा कि वो स्तुति कर क्या कर रहे हैं। तो वैसा उसका स्तुति भी कैसे होना चाहिए, उसके उपयुक्त या सीमा पार करते हुए नहीं। तो वैसे मधुरा चवाणी ब्रह्म, जो कि ब्राह्मणों को आदर देने की उसके ठीक ठीक वो जानकारी रखता है कि साधु और संतों को कैसे आदर देना चाहिए। और चौथा वो जानता है कि भगवान कौन है। ये चार प्रकार के जो गुण हैं जिसके अंदर दिखाई देता है, इससे ये सिद्ध होता है कि वो स्वर्ग से आया है। तो हम जान सकते कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा फ्लाइट स्वर्ग से लैंड हुआ है क्या नरक से। अभी नरक के विषय में बताया गया है कि नरक से आया हुआ फ्लाइट वाले व्यक्ति का क्या चिन्ह है। तो कहते हैं नरगस्थ चिन्हानी नरगगतस्य विरोध बंधु जलेसु नित्यम सरोगताय अतिवा दोषे वसंती देहे च कटुका च वाणी। तो कहते हैं नरक से आए हुए व्यक्ति का क्या दशा है, विरोधी बंधु, वो अपने बंधु से बड़ा विरोध करता है, ये पहला। और दूसरा जलेसु नित्यम, यानी कि अपने बंधुओं से ही वो खूब ईर्षा वगैरह करता है। सरोगताय, उनके शरीर में एक रोग नहीं कई रोग होते हैं। जैसे जयपुर में एक न्यूज एडिटर आया और वो कहने लगा जज को कि कोर्ट में आकर कहने लगा मुझे आप परमिशन दो कि मैं सुसाइड कर दूं। तो बोले क्यों, बोले इसलिए क्योंकि मुझे डायबिटीज है, साथ में ब्लड कैंसर है और मेरा किडनी भी फेल है, अब मैं पूरी तरह परेशान हूं और मुझे आप सुसाइड का परमिशन दो। सरोग आया, एक रोग नहीं कई रोग लगे रहते उनके शरीर में। अतिवा दोषे, उनके अंदर चोरी करने की आदत रहती है। और चौथा है वसंती देहे कटुकाचा वाणी, जो कि उनकी जो वाणी बड़ी कटु रहती है, बात करते ही करेला का जूस, सोचते कि क्यों बात किया, पहले मैं खुश था, बात करते और मन खराब हो गया। तो कुछ लोगों का वाणी ऐसे रहता है, एकदम कटु रहता है। तो केवल वाणी के आधार पर व्यक्ति जान सकता है कि ये व्यक्ति की गति कहां से है। एक बार सूरदास जो कि बैठे थे, तब उस समय ये सेनापति आया, तो उन्होंने पूछा ये अंधे, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें यहां से किसी को जाते हुए सुनाई पड़ा क्या, बोला नहीं। फिर मंत्री आया, उन्होंने पूछा हे सूरदास, जबकि अंधे को सूरदास भी कहते हैं, क्या, बोले यहां से किसी को जाते हुए सुनाई पड़ा, बोला नहीं। फिर आया राजा, उन्होंने कहा हे संत महापुरुष, मेरा ये भाग्य है कि मेरा रास्ता आपके पास आ पहुंचा, मैं मेरा एक प्रश्न है कि यहां से किसी को जाते हुए तुम्हें कुछ सुनाई पड़ा। तो इन्होंने कहा हाँ राजा, पहला तुम्हारा सेनापति आया था, दूसरा तुम्हारा मंत्री आया था, तीसरा हे राजन तुम आए हो। ये तो आश्चर्य हो गया, बोला तुम अंधे हो, अंधे हो के सब देख रहे हो, ये कैसे हो सकता है। तो बोला केवल वाणी से, और तुम्हारे सेनापति की वाणी इतनी कटु है कि वो नीचे के लोग जाएगा, और वो जो मंत्री का वाणी ऐसा है कि वो यहीं भटकेगा, हे राजन तुम्हारा वाणी इतना मधुर है कि ऊपर के लोग जाएंगे। तो व्यक्ति के वाणी के आधार पर व्यक्ति अपने गति का निर्माण करते, इसलिए कहा गया जीवाग्र वसुति लक्ष्मी जीवाग्र मित्र बांधवा। तो वैसे व्यक्ति एक देह से दूसरे देह में केवल देहांतर होता रहता है, और ऐसे अपने कैसे देहांतर होता है, तो बताया गया अपने कर्म के अनुसार वो एक देह से दूसरे देह में भटकता रहता है। तो वह व्यक्ति जो इस प्रकार की बद्धावस्था में है, वो व्यक्ति इस वस्तु को ही सत्य मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ये बद्धावस्था के एक और एक कैटेगरी है, जो कि मायावादी, जो कि कहते हैं मैं स्वयं भगवान हूं, जो ये कहते हैं कि ये सारा संसार मिथ्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, ये भौतिक संसार को मिथ्य के रूप में उन लोग पूरी तरह तिरस्कृत करते हैं और केवल एकमात्र आध्यात्मिक को ही प्राप्त करने का उन लोग का प्रयास रहता है। तो लेकिन ये मिथ्य कैसे हो सकता है, ये झूठ कैसे हो सकता है? वैष्णव सिद्धांत यह है कि ये जो जगत जो है ये पूरी तरह मिथ्य नहीं है, कुछ समय के लिए सत्य है। श्रील प्रभुपाद बड़ा सटीक उदाहरण देते हुए ये समझाते हैं कि जैसे कि एक सोना है, वो सोने के कण से अगर कुछ निकाला जाए तो क्या मिलेगा? सोने के टुकड़े से सोना ही मिलेगा। अब सोने के टुकड़े से थोड़ी ना लोखंड आएगा। उसी प्रकार परब्रह्म जो कि परम सत्य है, उस परम सत्य से झूठ वस्तु कैसे निकल सकती है? ये भौतिक जगत मिथ्य कैसे हो सकता है? अगर ये मिथ्य है तो भगवान के अंदर भी कुछ दोष है, तो मिथ्य कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान पूर्ण सत्य है, तो भगवान से निकला हुआ ये जो वस्तु है, इसलिए प्रभुपाद इस श्लोक को कोट करते हैं, भूमि रपो अनिलो वायुर खम मनोबुद्धि रेवच भिन्न प्रकृति मष्टता, ये भगवान की भिन्न शक्ति है और इसको भगवान की शक्ति मानते हैं। तो भगवान अगर परम सत्य है तो शक्ति भी सत्य है। एक बार आदि शंकराचार्य अपने सारे शिष्यों के साथ जंगल से जा रहे थे, तो आदि शंकराचार्य का यही कहना है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, वो अपने सारे शिष्य को यही बता रहे थे। तो हुआ यूं कि सामने से एक पागल हाथी आ रहा था। अब वो जब हाथी आया तो भागे वहां से सभी लोग। पहला तो गुरुजी भागा और एक बड़ा पेड़ देख के चढ़ गया, तो सब इधर उधर भाग गए। फिर पागल हाथी जब निकल गया तो उतरे शंकराचार्य और उनके सारे शिष्य गण। तो शिष्य ने पूछा, हे गुरुवर, आप ही तो कहते कि ये जगत जो है मिथ्या है। बोला, हाँ सत्य है, वो तो जगत तो मिथ्या ही है, आप सही कह रहे हो। तो बोले, ये अगर जगत मिथ्या है तो हाथी आ रहा था वो भी मिथ्या है। बोला, हाँ वो भी सही है, वो जो हाथी आ रहा था वो भी झूठ है, तो फिर आप क्यों भागे? तो इन्होंने कहा, मैं जो भागा पेड़ के ऊपर वो भी मिथ्या है, वो भी झूठ है। तो ये मायावादी लोग जो है, इन लोगों के तर्क का कोई आधार ही नहीं है। तो वास्तविकता सबसे बड़ा मूर्ख यही है जो ये कहता है कि ये मिथ्या है, ऐसे सोचकर जो त्यागता है वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसलिए वैष्णव सिद्धांत क्या है? वैष्णव सिद्धांत यह है कि हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में उपयोग करना, यह बुद्धिमानी है। कुछ भी मिथ्या नहीं है। जब वस्तु भगवान से जुड़ जाती है तब वो सत्य बन जाती है। निर्बंध कृष्ण संबंधम युक्तम वैराग्यम उच्यते। जैसे ही कृष्ण से वो वस्तु जुड़ती है तो वो युक्त वैराग्य बताया गया है। यानी कि जब वस्तु को भगवान से जोड़ेंगे तो वो सत्य माना गया, ये वैष्णव सिद्धांत है। लेकिन जबकि ज्ञानी लोग क्या करते, इसे त्याग दे, कहते सब माया है, सब छोड़ के चले जाओ। लेकिन वास्तविकता वो भी एक प्रकार के मूर्ख है। इसलिए शरीर हालांकि नश्वर है, लेकिन शरीर हमें उपयोग होता है कैसे, भगवान के भजन साधन करने के लिए। तो ये एक शरीर एक वाहन है, जिस वाहन से हम भगवान के पास पहुंचने के लिए हमें ये वाहन काम कर या सहायता देती है। तो ये इस प्रकार वास्तविकता ज्ञानी या वास्तविकता पूर्ण परम सत्य माना गया है, इसको कहा गया विद्वान। हरे कृष्ण। जो जो भी कुछ चर्चा किया इसमें से मैंने कुछ नटनागर प्रभु से भी सहायता लिया तो उसको मैं एक बार धन्यवाद करूंगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? किसी का प्रश्न? ठीक है, समय भी काफी है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भगवती पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।